हबकुक अध्याय दो। आगे भविष्यद् वक्ता कहता है, हबकुक अध्याय दो पद एक, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए उलाने के विषय क्या उत्तर दूं। भविष्यद् वक्ता हबकुक को ज्ञात था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। कभी कभी हम परमेश्वर को समझाने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए कभी कभी भावुकता में हम अधिक कह जाते हैं और परमेश्वर को चुनौती दे बैठते हैं, और तभी अचानक आभास होता है और मैं आगे बढ़ गया, मैं गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा। जो कुछ मैंने कहा है उसके लिए परमेश्वर मुझे फटकारेंगे। गुम्मट में जाकर प्रतीक्षा करो, मैं कहूंगा, परमेश्वर, मैं रोया और कहा, मेरी समझ में नहीं आता, आप क्यों कार्य नहीं कुछ करते। आपने कहा, आप कर तो रहे हैं परंतु मेरी समझ में नहीं आता और ना मैं समझूंगा। आप कसदियों को क्यों देख रहे हैं जो वह हमसे भी अधिक भ्रष्ट है। मैं जाकर गुम्मट पर बैठा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि आप क्या कहेंगे। हबकुक अध्याय दो पद दो, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बात लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज पड़ी जाए। ध्यान दे, लिखा है दौड़ते हुए भी सहज से पड़ी जाए। ऐसा नहीं कि जो पड़े वो दौड़ता हुआ चला जाए, लेकिन दौड़ते हुए भी सहज से पड़ी जाए। दर्शन की बात लिख दो, सहज बना, ताकि जब लोग पड़े दूसरों को बताने के लिए दौड़े। हबकुक अध्याय दो पद तीन, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, ये अपने नियत समय में पूरा होगा। हबकुक अध्याय दो पद तीन में आगे लिखा है, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होगी, ये मसीह के आने के समय का चित्र है और उसकी देरी ना होगी। उन्होंने कहा, उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी, उसमें देर ना होगी। कलीसिया मसीह के आने की प्रतीक्षा लगभग 2000 वर्ष से करती आ रही है, लेकिन हमने आइंस्टीन जैसे विख्यात वैज्ञानिक से सीखा है कि समय अपेक्षित है। जितने अधिक गति से आप चलेंगे, समय उतना ही कम होता जाएगा। यदि आप प्रकाश की गति से चलेंगे तो समय लगभग रुक जाता है। यदि आप में से किसी को अंतरिक्ष यात्री बनकर आपको अंतरिक्ष की भीतरी स्तर की यात्रा करने के लिए भेज दिया जाए और हम कहेंगे कि हमने अंतरिक्ष यान तैयार किया है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चुंबकीय शक्ति के द्वारा कार्य करता है, वो प्रकाश की गति के समान यात्रा कर सकता है, अर्थात 185,900 मील प्रति सेकंड की गति से। आप उनमें से एक अंतरिक्ष यान में बैठकर अल्फा सेंचुरी के लिए उड़ान भरते हैं, जो सूर्य के निकट नक्षत्रों में से एक है। ग्रह मंडल में प्रवेश के बाद विभिन्न ग्रहों में उड़ते हुए ये मालूम करे कि जीवन की संभावना कहाँ है। अब आप अपना अंतरिक्ष यान वापस सूर्य मंडल और पृथ्वी ग्रह की तरफ मोड़ते हैं, और आगामी 5 वर्ष या अधिक में आप एडवर्ड वायु सेना के अड्डे पर पृथ्वी पर उतरेंगे, जबकि आप अपने कैलेंडर के हिसाब से अंतरिक्ष यान में गए थे। उसके हिसाब से आपको वापस पृथ्वी पर लौटने पर 10 वर्ष लगे, क्योंकि समय अपेक्षिक है। आप परिचित चिन्ह ढूंढ रहे होंगे, आप एडवर्ड वायु सेना का अड्डा ढूंढ रहे होंगे, परंतु शायद आपको वो ना मिले, क्योंकि उस समय तक करीब 30 लाख वर्ष पृथ्वी पर निकल चुके होंगे, और जब आप पृथ्वी पर लौटेंगे 30 लाख वर्ष बूढ़े हो चुके होंगे, जबकि आप केवल 10 वर्ष बूढ़े हुए होंगे। आप अपनी पत्नी, परिवार और किसी को भी जिन्हें आप जानते थे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये सिद्धांत विख्यात वैज्ञानिक एइंस्टीन के समय के सापेक्षतावाद के अनुसार है। मैं नहीं जानता कि यीशु मसीह कितनी तीव्रता से यहां गए, धरती पर अपने आवास में वे कितनी तेज चला करते थे। उन्होंने कहा था, मैं शीघ्र आता हूं। यीशु मसीह के चले जाने के बाद से अब तक पृथ्वी सूर्य के लगभग 2000 चक्कर लगा चुकी है। पृथ्वी 2000 वर्ष अधिक पुरानी हो गई, किंतु इससे मसीह यीशु की आयु आंकी नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो आदिकाल से अनंत काल तक है। समय के दृष्टिकोण से वो अपेक्षिक है। यदि वो कहते हैं वो प्रकाश की गति से गए और प्रकाश की गति से आएंगे, और जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम की ओर चमकती है, इसी प्रकार मानव पुत्र का आगमन होगा। इस प्रकार उनका आगमन बिजली के समान होगा। प्रभु, आपके आने में इतनी देर क्यों हुई? वो कहेंगे, आपका क्या मतलब है? मुझे तो गए हुए अभी 10 मिनट ही हुए हैं। भविष्यद्वक्ता हबकुक हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हम परमेश्वर के प्रति और उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य या वफादार रहे, क्योंकि दर्शन की सारी बातें समय के लिए रखी गई है जो अंत में पूरी होगी। इसमें कुछ भी झूठ नहीं। यद्यपि इसमें देरी हो सकती है, तो बाट जोते रहना, क्योंकि वो अवश्य पूर्ण होगा, इसमें देरी नहीं होगी। नया नियम हमें धीरज से यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है। मसीह यीशु के शिष्य पत्रस ने कहा है, अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो टट्ठा करेंगे और कहेंगे, कहां हैं उनके आने की प्रतिज्ञा? तुम कहते हो यीशु आने पर है, ओह ऐसा तो कब से सुन रहे हैं? प्रारंभिक कलीसिया अर्थात हमारे पूर्वज जब से सो गए, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। एक रूपता सिद्धांत, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। जब से बाप दादा सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन पत्रस कहता है, वे जानबूझकर ये भूल गए कि नूह के काल के लोग जल में डूबकर नाश हो गए। एक बड़ी गलती जो क्रांतिकारी सिद्धांतवादी करते हैं वो ये है कि वे जल प्रलय की सच्चाई को भौगोलिक तौर पर नकारते हैं। लेकिन पत्रस ने आगे समय की अपेक्षिता के विषय में कहा है, पहला पत्रस अध्याय 3:8, प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये स्पष्ट करने के लिए हमें एइंस्टीन की आवश्यकता नहीं है, ये तो प्रभु स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं, वो भी एइंस्टीन के पृथ्वी पर आने से पूर्व। पत्रस ने आगे कहा है, दूसरा पत्रस अध्याय 3:9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करते, जैसी देरी कितने लोग समझते हैं फिर उन्होंने स्पष्ट किया है। दूसरा पत्रस अध्याय 3:9, वो तुम्हारे विषय में धीरज धरते हैं और नहीं चाहते हैं कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए प्रभु की ओर से देरी भटके हुए लोगों के उद्धार के लिए है, वो धीरज धरते हैं उनके लिए जिन्होंने अभी भी प्रभु को स्वीकार नहीं किया है। याकूब कहता है, याकूब अध्याय 5:7, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, देखो गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। इसलिए हमें प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया है, सदा उत्साहित रहो क्योंकि ऐसा होगा, वो अवश्य ही आएंगे। हबकुक अध्याय 2:4, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। फिर वही घमंड के विषय संकेत, वो व्यक्ति जिसका मन सीधा नहीं है। इसका संकेत नबूकदनेस्सर की ओर है, जो बेबीलोन का उस समय का शासक था। जब उसने यहूदा क्षेत्र को जीता और भविष्यवाणी पूरी हुई, तब वृद्ध नबूकदनेस्सर घमंड से फूला, बेबीलोन के चारों ओर घूमते हुए वो शानदार शहर, ये संसार के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य था, वो वहां के रमणीय बाग बगीचों का आनंद ले रहा था। स्वर्ग से उसको चेतावनी मिली, वो दानियल के पास आया और कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे फल समेत मुझे बताकर समझाओ। मैंने पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा देखा है, उसकी ऊंचाई बहुत ऊंची है और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती है। और तब कोई आया और पेड़ को काट डाला, मैंने उन्हें कहते सुना, इसे काट डालो, और पेड़ को जड़ से काट डाला गया, लेकिन फिर जड़ में से नई डालियां फूटने आरंभ हो गई। दानियल, इसका क्या अर्थ है? दानियल ने कहा, महाराज ये स्वप्न बुरा है, आपके शत्रु ये सुनकर आनंद मनाएंगे, क्योंकि आप महान और सामर्थी हो गए और आपका राज्य विशाल है और पृथ्वी पर फैलता जा रहा है और आपके राज्य में शरणार्थी रहते हैं, लेकिन आपके मन में घमंड आ गया और स्वर्ग से देखने वाले ने ये देखकर आदेश दिया है, इस पेड़ को काट डालो। आपको काट दिया, लेकिन आप फिर से बढ़ने लगेंगे। इसलिए महाराज शांति पूर्वक रहे, परमेश्वर के समक्ष कोमलता से जाओ और सावधानी पूर्वक चले, घमंड आप पर हावी ना होने पाए। लगभग 1 वर्ष तक नबूकदनेस्सर नम्रतापूर्वक आचरण किया। जब वो शहर में चहलकदमी कर बेबीलोन को देख रहा था, तब उसने कहा, क्या ये वही महान बेबीलोन नहीं है जिसका निर्माण मैंने किया है? स्वर्ग से आदेश आया, इसे काट डालो। वो पागल हो गया। यहां एक चेतावनी है, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। इसके पश्चात नबूकदनेस्सर 7 वर्ष तक पागलों के समान जानवरों के साथ समय बिताया, फिर उसका मानसिक संतुलन लौट आया। उसने वो स्वीकार किया जो प्रभु ने पहले ही कहा था। पागलपन की स्थिति से निकलने के पश्चात नबूकदनेस्सर ने घोषणा की, दानियल अध्याय 4:34 से 37 तक, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उसे नहीं कह सकता है, तूने ये क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। नबूकदनेस्सर के साथ ऐसा होने से पहले हबक्कूक ने अपनी भविष्यवाणी में सचेत कर दिया था, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यहां परमेश्वर के विषय में एक महिमामय सत्य दिखाई देता है जिसकी घोषणा नया नियम में 3 बार की गई है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, अर्थात यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा कृपा प्राप्ति और परमेश्वर के साथ सही हो जाना। ये कार्य विश्वास के द्वारा ही संभव है, ना कि कर्मों के द्वारा। हबक्कूक अध्याय 2:5। भविष्यद्वक्ता हबक्कूक घोषणा करते हैं, दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता है और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती और मृत्यु की नाई उसका पेट नहीं भरता। वो सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। घमंडी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, पापी व्यक्ति के लिए कहीं भी विश्राम नहीं है। जिस संसार में हम रहते हैं उसकी एक बुरी बात यह है कि मनुष्य को प्राप्त पूर्ण स्वतंत्रता के होते हुए भी, जो इतिहास के किसी भी काल से अधिक है, अपने आप को वासना और अभिलाषा में लिप्त करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध है, लेकिन विचारशील बात यह है कि इन सभी अवसरों के होते हुए व्याकुलता और असंतोष जो वर्तमान युग में दिखाई देता है अन्य युगों से अधिक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का अपनी बेलगाम वासनाओं के प्रति समर्पण उसके हृदय के खालीपन को कभी नहीं भर सकता। वो बिना पेंदे के पात्र के समान है। जितना अधिक आप अपने शरीर को वासना में लिप्त करते हैं वो उसकी मांग उतना ही अधिक करता है। संतोष की अपेक्षा आपके पास असंतोष है। संभवतः आप किसी की लालसा करते हैं, आप अभिलाषी है, कामुक है। इनकी पूर्ण तृप्ति कभी भी नहीं है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। हबक्कूक अध्याय 2:6-7। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताला मारकर ना कहेंगे कि हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है, जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्योंकि वे लोग अचानक ना उठेंगे। और क्या वे ना जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? आपने बाबिलोन को जीत लिया, आपने उस देश पर अधिकार कर लिया, आपने शिकार पकड़ लिया है, परंतु फिर भी संतुष्ट नहीं है। आपको और अधिक प्राप्त करने की चाह है। आपको इतना मिल गया कि शायद आप खर्च भी न कर पाए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है। जी हां, एक दिन आप स्वयं शिकार हो जाएंगे। हबकुक अध्याय 2:8-14। और क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, सो सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है, और वो उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वो अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी, और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है, और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से ये नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। परमेश्वर यहां कसदियों और उनकी विजय के विषय में कह रहे हैं, और उन देशों के लिए जो युद्ध के द्वारा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे दूसरों को परस्त कर रक्तपात तथा अन्याय के द्वारा स्वयं को स्थापित करना चाहते हैं। किंतु पद 14 एक महिमामय दिवस का उल्लेख करता है जो भविष्य की ओर संकेत करता है। हबकुक अध्याय 2:14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। ओह, परमेश्वर जानते हैं, मैं उस दिन के लिए उत्सुक हूं जब पृथ्वी भर परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। ये पृथ्वी यदि मनुष्यों के लिए नहीं होती तो निवास के लिए बहुत अच्छा स्थान होती, क्योंकि मनुष्य ने इसके वातावरण को इतना दूषित कर दिया है कि मुझे इसकी चर्चा करने से भी घृणा होती है। जब हम किसी भी पिकनिक अथवा शिविर स्थल में जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? कितना सुंदर स्थान, पर्वतों के बीच में सुंदर पेड़ पौधे और बहुत कुछ, और फिर भूमि पर बिखरी हुई भोजन वस्तु, कागज तथा कूड़ा करकट इत्यादि। लोग कितनी लापरवाही करके उस सुंदर रमणीक स्थल को दूषित कर देते हैं, वहां के वातावरण को दूषित कर देते हैं, जिसके कारण हम बीमार हो सकते हैं। ये अत्यंत दुख की बात है, परंतु ये तो लोगों की स्वाभाविक आदत का भाग है। पृथ्वी पर हम क्या देखते हैं? मनुष्यों के द्वारा लाया गया भ्रष्टाचार। आप इससे कैसे बच सकते हैं? किंतु एक दिन पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आप जहां भी जाएंगे, हर व्यक्ति जिससे आप मिलेंगे परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगा। ओ परमेश्वर, वो दिन शीघ्र आए। प्रभु कहता है, हबकुक अध्याय 2:15-16। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। तू महिमा की संति अपमान से ही भर गया है, तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दहने हाथ में रहता है सो घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा वैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। तेरी छांट तेरे ऊपर होगी और वही विभव होगा। हबकुक अध्याय 2:17। क्योंकि लबनोन में तेरा किया हुआ उपद्रव, अर्थात उन्होंने लबनोन को नष्ट किया, जब उन्होंने सूर नगर को लबनोन प्रदेश में बुरी तरह नष्ट कर डाला। हबकुक अध्याय 2:17-18। और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिनसे वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर आ पड़ेंगे। ये मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। बेबीलोन की गलती स्मरण कीजिए। अपनी विजय का श्रेय वे अपने देवताओं को देने जा रहे थे, जबकि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने के लिए उन्हें एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहे थे। इसके विपरीत वे विजय का सहारा अपने देवताओं के सर पर बांध रहे थे और उन्हीं की आराधना कर रहे थे। आपको याद होगा जब बेलशेजर राजकुमारों और प्रधानों के साथ विशेष बोझ में था, वे विभिन्न देवताओं की प्रशंसा कर रहे थे और आराधना कर रहे थे। दाख मधु पीते पीते बेलशेजर ने आज्ञा दी, सोने चांदी के जो पात्र जो मेरे पिता नबूकदनेज़र ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ कि हम उनमें दाख मधु पिए। ये पात्र परमेश्वर के मंदिर में उपयोग के लिए पवित्र किए हुए थे। वे इन पात्रों में दाख मधु पीकर सोने चांदी और पीतल की देवताओं की स्तुति कर रहे थे। तभी एक मनुष्य के हाथ की सी उंगलियां निकलकर दीवार पर कुछ लिखने लगी। दानियल अध्याय 5:25। मैंने तकेल उफारसीन, अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। यहां हबकुक भविष्यद् वक्ता ढली हुई मूर्तों के विषय में, जिन्हें कसदी लोग बेबीलोन में पूजते थे, इन मूर्तों से क्या लाभ होगा। हबकुक अध्याय 2:18 में आगे लिखा है, फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देकर ढलने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। ये मूरत तो बोल नहीं सकती। मूर्ति की रचना करना और उसकी उपासना करना मानव इतिहास में मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। भविष्यद्वक्ता यशिया ने भी इस निपट मूर्खता के विषय में उल्लेख किया है। एक व्यक्ति लकड़ी का एक टुकड़ा लेता है और उस लकड़ी पर एक छवि खोदता है और खोदी गई लकड़ी के कुछ टुकड़ों को आग में जला देता है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। कुछ लकड़ी के टुकड़ों को चूल्हे में डालता है ताकि भोजन बना सके और एक बाघ को मेज पर सजाता है, उसे दंडवत करता है, प्रार्थना करता और आराधना करता है। एक ही लकड़ी के टुकड़े में से वो स्वयं को गर्म करने के लिए जलाता है, कुछ को भोजन पकाने के लिए जलाता है और कुछ को ईश्वर के रूप में पूजता और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कितना हास्यपद है ये सब। मूर्तियों के विषय में भजनकार दाऊद कहता है कि मूर्ति पूजकों के कार्य व्यर्थ है, क्योंकि वे जंगल से एक लकड़ी लेते और उसे खोदकर अपने लिए मूर्ति बनाते हैं। दाऊद कहते हैं, मूर्तियों की आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। फिर उनका एक रोचक अवलोकन देखिए, जिन्होंने उन्हें बनाया है वे भी उनके समान हो गए हैं। समझने के लिए यहां पर पहली बात यह है कि मनुष्य को एक ईश्वर की आवश्यकता है। अनेक लोग अपने लिए ईश्वर स्वयं उत्पन्न करते हैं। जब मनुष्य ईश्वर की उत्पत्ति करता है तो वो अपने जैसे ईश्वर ही उत्पन्न करता है। ये सब मानव धारणा की उपज होती है। जैसी आंखें मेरी है, मैं अपने ईश्वर की आंखें वैसे ही बनाता हूं। जैसे मेरे कान है, वैसे ही कान मैं अपने ईश्वर को देता हूं। जैसी मेरी नाक है, वैसे ही नाक मैं अपने ईश्वर की बनाता हूं। अपने ही पांव के समान मैं अपने ईश्वर को पांव देता हूं। यदि मेरे बाल नहीं है तो मैं अपने ईश्वर गंजा बना दूं। मैं आंखें बनाने में चाहे कितना अधिक परिश्रम क्यों न करूं, फिर भी वे आंखें कभी भी देख नहीं सकती। चाहे मैं मुंह बनाने में विशेष ध्यान क्यों न दूं, फिर भी वो बोल नहीं सकता। मैं कितने ही सुंदर पांव क्यों न बना दूं, वो चल नहीं सकते। वो मात्र एक मूर्ति है, एक मुख, छोटी सी मूर्ति। दुख की बात यह है कि मनुष्य अपने ईश्वर के समान ही हो जाता है। यदि आपका ईश्वर एक मुख, मूर्ख, छोटी मूरत है तो आप भी अपने ईश्वर के समान हैं, चेतनाहीन। आप परमेश्वर की वाणी नहीं सुन पाते, उनकी महिमा नहीं देख पाते, परमेश्वर की उपस्थिति का आभास नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि आप अपने द्वारा बनाए हुए ईश्वर के समान हो गए हैं। कभी भी आप उसकी आवाज नहीं सुनते, कभी उसकी महिमा नहीं देखते, कभी अपने ईश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं करते। आप भी अपने ईश्वर की तरह संज्ञाहीन हो जाते हैं। मनुष्य अपने ईश्वर की तरह हो जाता है। वो एक महिमाविंत आशीष हो सकती है या फिर भयंकर श्राप। ये निर्भर करता है कि आपका ईश्वर कौन है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3:8, परंतु जब हम सबके उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वो अपने परमेश्वर की तरह बनता जाता है। 1 यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आपके पास दो बातें हैं। एक, मनुष्य अपना ईश्वर स्वयं बनाता है और अपने ईश्वर की तरह ही हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा सदा उद्धार रहित और पदच्युत करने वाला अनुभव है। आप कभी भी मूर्ति पूजा के द्वारा नीचे गिर सकते हैं। ये नीचे का स्तर है, क्योंकि यदि एक मूरत आपका ईश्वर है तो आप अपने ईश्वर की तरह हो जाते हो। लेकिन तुम्हारा ईश्वर तुमसे निमिन है, क्योंकि तुम्हारे पास आंखें हैं और तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास कान हैं और तुम सुन सकते हो, तुम्हारे पास मुंह है और तुम बोल सकते हो। देखो, तुम्हारा ईश्वर तुमसे निम्न है, लेकिन तुम अपने ईश्वर की तरह हो जाते हो। इसलिए ये पदच्युत करने वाला अनुभव है, निम्न स्तर पर मूर्तों की पूजा का अनुभव। लेकिन सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना करना परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को फिर से अपने स्वरूप और समानता में लाना है। परमेश्वर हमारी घटी को, जो गिरने के कारण हुई, पुनर्स्थापित कर सकता है। पवित्र आत्मा की शक्ति से जो हम में है, वो हमें परमेश्वर की स्वरूपता में ला रहा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने अपनी स्वरूपता में बनाया। जब मनुष्य पाप में गिरा, वो परमेश्वर की समानता में था, परंतु वो गिर गया। अब परमेश्वर फिर से बना रहा है, फिर से रूप दे रहा है पहले वाली इच्छा और उद्देश्य के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य परमेश्वर के लोगों के जीवन में पुनर्स्थापित हो रहा है, लेकिन उन मूर्खों के लिए बोलता है जो इन मूक छोटी मूर्तों को बनाते हैं। हबकुक अध्याय 2:19। हाय उस पर जो काट से कहता है, जाग उठो छोटे ईश्वर, मुझसे बात करो। हबकुक अध्याय 2:19 में आगे लिखा है, वह आबोल पत्थर से उठ, क्या वो सिखाएगा? देखो, वो सोने चांदी में मड़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है, परंतु वो सांस ही नहीं लेता। हबकुक अध्याय 2:20। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। विरोधाभास है, पत्थर के ईश्वर जिनके ऊपर सोना चढ़ाया गया, लकड़ी पर चांदी या सोना चढ़ाया गया, वे बोल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, लेकिन जिंदा परमेश्वर अपने मंदिर में है।